ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா. தோ கார்த்திக் தாமோதர் மாஸ் கா ஆஜ் 14 கல் பூர்ணிமா கார்த்திக் மாஸ் சமாப்தி கி ஓர் ஜா ரஹா ஹை. நமாம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத தேசதார. தோ இஸ் சால் கா கார்த்திக் கா மஹினா அப் சமாப்தி கி ஓர் ஆகே பட் ரஹா ஹை. பாக்யசாலி ஹை இஸ் சால் இஸ் மஹினே மே ஜின்ஹோனே ஹரி கதா ஹரி கீர்த்தன் கீர்த்தன் கியா கதா சுனி கதா கியா பகவான் கா தர்ஷன் கியா தீப் தர்ஷன் கியா ஏக் சால் கே லியே பகவான் கி கிருபா கோ ப்ராப்த் கர் லியா. அந்தராஷ்டிரிய கிருஷ்ண பாவனா அமிர்த சங் இஸ்கான் ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம் சன்ஸ்தா கி ஓர் சே விஸ்வபர் மே கார்த்திக் மஹினே மே தீபாவளி ஹர் ரோஜ் ஹோத்தி ஹை. ஹர் ரோஜ் தீப் பகவான் கோ அர்ப்பண ஹோதா ஹை. ஓர் ஆஜ் பாகே சே ஓஜஸ்வி மாதாஜி நே அப்னே கர் பே ஓர் சஞ்சீவ் பிரபு உன்கே புத்ர घर में दामोदर अष्टक का पाठ और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन गौरारती और श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया है. बहुत बहुत इनको धन्यवाद करते हैं. यहां एक श्लोक भगवद गीता का हमारे सामने खुला है. वेदेशु यज्ञसु तपस्सु चैव दानेशु यत पुण्य फलम प्रतिष्ठम. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो वेद पढ़ने से यज्ञ करने से तपस्या करने से दान देने से पुण्य प्राप्त होता है इसका मतलब ये सब काम करने चाहिए. अठारहवें अध्याय भगवान अठारहवें अध्याय भगवद गीता में कहते हैं ये शिक्षा देते हैं यज्ञ दान यज्ञ दान तप कर्म न त्यजेम. ये तीन कर्म कभी छोड़ने नहीं चाहिए. और यहां कहते हैं ये कर्म जो भी करता है उसको पुण्य प्राप्त होता है. लेकिन आगे क्या कह रहे हैं अतेति यति सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम. लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है और प्रेम भक्ति के मार्ग पर चलता है उसको वो सब फल मिलते हैं जो वेद यज्ञ तप दान से मिलते हैं. उसको ये करने की जरूरत नहीं है. इसका अर्थ जो अभी हम हरे कृष्ण कीर्तन यहां कर रहे हैं इसका फल वेद के पाठ के बराबर नहीं. वेद के पाठ दान पुण्य यज्ञ ये सब करो उसका जो फल मिलता है उन सब के फल के समान केवल एक बार भगवान का नाम मुख से लेना है इसका फल है. गौकोटि दानम ग्रणे च काशी 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 भगवान विश्वनाथ शंकर जी का ज्योतिर्लिंग है काशी में बनारस गंगा जी के तट के ऊपर है. उधर कोई आदमी दान करे क्या दान करे गौ कोटि कोटि कहते हैं करोड़ को. करोड़ का मतलब 100 मिलियन. इतनी कोई गाय दान करे गौ कोटि दानम ग्रहणे च काशी कब करे ग्रहण के दिन करे. ग्रहण के दिन जो दान किया जाता है वो ज्यादा फल देता है. यहां आपके यहां ग्रहण मनाते हैं कभी ग्रहण को क्या करते हैं. पुराने जमाने में जब एक्लिप्स होता था ग्रहण होता था लोग स्नान करने जाते थे और स्नान करके वापस आके लोगों को दान देते थे. घर के बाहर बैठते थे और जहां जो आए उसको अन्न दान किया करते थे। ये बहुत पुरानी परंपराएं थी। तो ग्रहण के दिन दान देना बहुत बड़ा फल प्रदान करता है। गोकोटि दानम ग्रहणे च काशी प्रयाग गंगा युत कल्पवास। अगर कोई आदमी प्रयाग, प्रयागराज तीर्थों का राजा है, प्रयाग जहां गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है, उसको प्रयागराज कहते हैं। राज का मतलब सब तीर्थों का राजा। वहां बैठकर कोई कल्पवास करे, कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन को, ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत लंबा होता है। इतनी बड़ी तपस्या कोई करे उधर जाके बैठे। वैसे मान्यता यह है कि जनवरी के महीने में, भारत में बहुत ठंडी होती है जनवरी में, ऐसे जीरो टेम्परेचर 1, 2, 3, 0 -1 इतना होता है। और उस वक्त अगर कोई एक महीना, जहां प्रयागराज कभी जाएंगे तो यहां से गंगा जी आती है, वो सफेद रंग की है, धौला रंग है उसका, व्हाइट। यहां से जमुना आती है, वो सांवले रंग की है, ब्लू है। दोनों मिलती हैं, दोनों जैसे मिलती हैं तो दोनों रंग अलग दिखते हैं, दोनों को मिलते हुए दिखते हैं, टू डिफरेंट कलर मिक्सिंग टूगेदर वो दिखता है। और जमुना वहां बहुत भरी हुई है और गंगा वहां छोटा सा जा आता है, और गंगा का जो जो ब्रेथ है वो बहुत बड़ी, 1 किलोमीटर से ज्यादा है। तो खाली जगह होती है गंगा में, रेती होती है, उधर लोग टेंट लगा के एक महीना रहते हैं। और रोज सुबह सवेले जनवरी के महीने में 0 डिग्री टेम्परेचर, ठंडी में ठटकते गंगा में स्नान करते हैं। और एक महीना जो स्नान करते हैं जनवरी में, उसको बोलते हैं कल्पवास का फल मिलता है, ब्रह्मा जी के एक दिन जितनी तपस्या हो गई। दो बार हमने जनवरी के अंदर कुंभ मेला के समय उधर रहकर सेवा किया है भक्तों की। और प्रभुपाद जी बहुत 72 में शायद दो बार कुंभ मेले में विशेष रूप जाके वहां टेंट के अंदर रहे थे। और प्रभुपाद जी उससे पहले प्रयागराज में अपनी दवाओं के काम से भी रहते थे, तो उनको मालूम था ये तीर्थ कितना महत्वपूर्ण है। तो वहां अभी भी एक महीना कोई रह जाए जनवरी में, बहुत ठंडी होती है, कुछ नहीं दिखते, सन सैंड, ऊपर सुबह सूरज दिखता है, नीचे सैंड है, सन सैंड बस, और कुछ भी नहीं, धूली में रहना पड़ता है। उधर ही टेम्पररी बाथरूम बनाते हैं, पाइपलाइनें बनाते हैं, और बड़े बड़े स्टील की प्लेट रखते हैं ताकि रोड बनते हैं, ताकि ट्रांसपोर्ट चलती है। कुंभ मेले में 1 लाख नहीं 20-25 लाख लोग उधर, एक पूरा गांव बनता है, एक पूरा विलेज बनता है। आज जितना आपके आइलैंड सारे का 1.2 मिलियन है, इससे ज्यादा लोग वहां सिर्फ कुंभ मेले में आते हैं और रहते हैं। और उन सबका भोजन, इतने लोगों का भंडारा चलता है, 5,000 लोग तो हम रोज प्रसाद अपनी इस्कान की तरफ से खिलाते थे बिठा के लोगों को। और वहां ब्रिक और सीमेंट इसका बड़ा टांकी बनाते हैं, जैसे कमरा है इतना, और आज सारी हलवा बना के वो टांकी भर के रखते हैं, हलवे की टैंकी भर के रखते हैं। कैसी, कौन सी टांकी? ब्रिक और सीमेंट की टांकी है, वो हलवे की भर के रखते हैं, इतना बड़े बर्तन कहां से लाएं। तो इतने लोगों को हलवा जो कब देना है, रात सारी पकाते रहते हैं, भरते रहते हैं और फिर बांटते रहते हैं। कभी आपको भगवान ऐसा मौका दे तो एक बार कुंभ मेला जाके वहां देखना। अब आएगा, 2007 में हम वहां थे, अर्धकुंभ था, 7 और 6 13 में आएगा, 13 जनवरी, 3 साल के बाद आएगा। उससे पहले अभी आने वाला हरिद्वार अभी गया है, तो इसके बाद अभी आने वाला है प्रयागराज का। देखो किसी का भाग है तो जाना। वहां कोई एक आदमी कल्पवास करे, ये बड़े से बड़ी तपस्या है। कुछ लोग प्रयाग के उधर उसी गांव के रहने वाले लोग भी एक महीना वहां आके टेंट में रहते हैं, अपनी रोटी पकाते हैं, भोजन अपना पकाते हैं, रोज स्नान करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, बस। बहुत बड़ी तपस्या है। ए कोई तपस्या कर ले, काशी में कोटी गाय दे दे, 100 मिलियन गाय दान कर दे, काउस, प्रयाग में एक साल एक कल्प तक वास करे, तपस्या करे। गौकोटि दानम ग्रहणे च काशी प्रयाग गंगा युत कल्पवास यज्ञेश्च स्वर्णम मेनु मेरु दानम। और कोई यज्ञ करे और यज्ञ के अंदर मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत है, सोने का बना है, पक्का सॉलिड सोने का पर्वत है, गोल्ड का बना हुआ पर्वत है, वो कोई दान दे दे। गोविंद नाम नाम सुमरणे न तुल्य, ये सब इतने बड़े काम केवल गोविंद के नाम के उच्चारण के बराबर नहीं है। गोविंद नाम नाम सुमरणे न तुल्य, भगवान कृष्ण के गोविंद के नाम के जो उच्चारण करता है उसके बराबर ये सब नहीं है। इतना बड़ा दान दे, इतनी बड़ी तपस्या करे, इतना बड़ा यज्ञ करे, सोने का दान पर्वत कर दे, फिर भी गोविंद के नाम लेने के बराबर नहीं है। तो ये श्लोक आठवां अध्याय भगवद गीता का अंतिम श्लोक है कि कुछ लोग योग के मार्ग से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कुछ तप करके जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान का भक्त केवल हरे कृष्ण जपेगा तो उसको वो सब फल मिलेंगे जो इन सब कार्य से मिलते हैं, लेकिन भगवान मिलेगा। जो उनसे उन कार्यों में मिले ना मिले उसका कोई भरोसा नहीं है। देयर इज नो गारंटी कि यज्ञ करने से भगवान मिल जाए, ये कोई गारंटी नहीं। दक्ष ने इतना बड़ा यज्ञ किया था, उधर सारा यज्ञ विध्वंस हो गया, शंकर जी ने यक्ष का गला ही काट दिया, तो यज्ञ में कोई जरूर नहीं है कि सदा के लिए फल मिल जाए। लेकिन भगवान के नाम लेने वाला अजामिल कितना पापी था, लेकिन सारे पाप एक मिनट में दुगुन धुल गए। तो इसलिए ये श्लोक हमको कहते हैं कैसे भी भगवान का नाम लेने का नेम बनना चाहिए, कैसे भी अपने जीवन में रोज भगवान के नाम जपने का दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए। जितना पैसे का नोट गिन के अंदर रखने का शौक होता है ना, गिन के एक दो तीन चार द्वार त्वा के शेंक ऐसे भगवान का नाम अच्छी तरह से रोज जपने का गिनने का नेम बना लेना चाहिए। ये धन है, ये भगवान का नाम जपना बहुत बड़ा धन है, ये धन इकट्ठा करना चाहिए। वो धन बेकार है, वो धन ना किसी काम का नहीं है, कागज का टुकड़ा है, आपके जेब से निकला और किसी बाहर सब्जी वाले को दे दिया, आपसे गया, किसी काम का नहीं है। लेकिन ये जितना दूसरों को देगा इतना बढ़ेगा, ये धन जितना दूसरे को बांटेगा उतना बढ़ेगा। ये धन ऐसा है बांटने से बढ़ता है, वो धन देने से कम होता है, और ये धन दूसरों को देने से बढ़ता है। तो इस धन को निश्चित रूप से इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन भगवान का नाम आदमी कब जपेगा, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, नाम नामी अभिन्न, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो कृष्ण को नाम के रूप में ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। कृष्ण कथा से कृष्ण से हमारी आसक्ति होगी, कृष्ण में हमारा मन लगने लगेगा, अटैचमेंट होगी, और हम चाहेंगे कृष्ण हमारे को प्राप्त हो। देखने से नहीं, आंखों से देखने से भगवान से प्रेम नहीं होता है, भगवान के बारे में कानों से सुनने से भगवान से प्रेम होता है। भगवान को देखने का साधन कान है, आंख नहीं है। कान के द्वारा भगवान को देखा जाता है, भगवान की कथा सुनने के द्वारा। तो आज की कथा जो है वो श्रवण के द्वारा कैसे रुक्मणी ने भगवान को प्राप्त करने का संकल्प किया, ये कथा शुरू करेंगे। लेकिन द्वारका चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में 11.5 साल तक रहे, बाल लीलाएं की और पोंगल लीला की, किशोर लीला की, बड़ा अच्छा भगवान का वहां समय बीता। आप लोग थोड़े आगे आ जाए, पीछे लोग आएंगे वो बैठ सकते हैं, आप लोग आगे आ जाइए, जो अंदर बैठे हैं वो आगे आ जाए ताकि पीछे जगह रहेगी। 11.5 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आ गए और 15-17 साल तक मथुरा में रहे। भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं केवल वृंदावन में ही दर्शन होता है, 15 कलाएं मथुरा में रहती है और द्वारका जाते हुए 14 कलाएं रह जाती। तो परसों किसके घर में सत्संग कर रहे थे आपने, संत सतीश और सीता माता जी के घर में, तब हमने आपसे कहा था वहां भगवान श्री कृष्ण को हम वृंदावन से मथुरा लाए थे और मथुरा से काल यवन को मरवा के जरासंध से भागकर भगवान रणछोड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गए, रणछोड़ गए और द्वारका में जाके पहुंच गए। द्वारका की नगरी समुद्र के बीच में विश्वकर्मा ने बनाई। किसने बनाई बेटा? आप लोग थोड़े आगे आओ ताकि वो जगह खाली हो जाए, पीछे लोगों को बैठना आसान हो। बच्चे लोग आगे आ जाओ, ए बच्चे लोग, ये जगह बहुत खाली है, इधर 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 ये बच्चे आगे आ जाए बेटी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अनर्त देश कहते हैं जिसको हम द्वारका कहते हैं ना, इसका नाम है अनर्त देश। महाराज अनर्त सूर्यवंशी एक राजा हुए हैं, उसके पिताजी किसी कारण से उसको कहा कि तुम्हें राज में जगह नहीं दूंगा, क्योंकि उसने कहा कि भगवान सब चीज का मालिक है, पूरी पृथ्वी भगवान की है। तो पिताजी ने कहा ठीक है, तो भगवान से पृथ्वी ले लो। तो महाराज अनर्त ने तपस्या की और भगवान विष्णु ने साक्षात वैकुंठ से 100 योजन की भूमि धरती के ऊपर नीचे उतारी। 100 योजन का मतलब 1600 माइल। इतनी धरती, वैकुंठ की धरती नीचे आई, उसका नाम हो गया अनर्त महाराज के नाम से अनर्त देश। फिर जब वहां भगवान ने द्वार जब अपना समुद्र के अंदर विश्वकर्मा से बहुत सुंदर महल बनाए और स्वर्ग से सुधर्मा सभा को नीचे उतारा और सब देवताओं ने आके भगवान को गिफ्ट दिया, तो उस वक्त गोपियां वृंदावन में कह रही थी, मथुरा में तो भगवान रहते थे, हम तो समाचार मिलता रहता था कि क्या हो रहा है, मथुरा वृंदावन दूरी नहीं, अब तो कहां चलेगी इतने दूर, हम उनका पता कैसे लगेगा। भगवान उनकी इच्छा को समझ गए। उद्धव के साथ योग माया के द्वारा भगवान ने सब गोपियों को रात रात को वृंदावन से लाकर एक बहुत बड़े सुंदर महल के अंदर पहुंचा दिया। सुबह जैसे गोपियां उठी तो वो तो बेचारी गांव की थी, उन तो घर उनका घास का बना हुआ था, इतने बड़े महल के अंदर सुबह पूछती है द्वार कहां है, द्वार कहां है, दरवाजा कहां है, दरवाजा कहां है, तो द्वार कहां है, द्वार कहां है, द्वार कहां है, तो उसका नाम हो गया द्वारका। तो गोपियों ने ये नाम उस स्थान को द्वारका दिया। पहले ये स्थान अनर्त देश और एक दूसरा भी इसका नाम है, बाद में आएगा कहीं तो बताएंगे, लेकिन अनर्त देश भागवत में लिखा है, जहां भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं वहां अनर्त देश लिखा है शब्द। तो द्वारकापुरी में जब भगवान पहुंचे तो सब यदुवंशियों ने कहा अब तो हम सुरक्षित जगह में हैं, इतनी सेफ जगह है कि समुद्र के बीच में कोई कैसे आएगा। अब सबके मन में इच्छा हुई कि वसुदेव और देवकी कहते हैं कृष्ण का विवाह होना चाहिए, लेकिन बलराम जी पहले बड़े बेटे हैं तो छोटे का कैसे विवाह पहले करें, पहले बड़े के विवाह करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इतनी देर में शरियाती महाराज सूर्यवंश का विवस्वत मनु का बेटा है, उसका पोता उसके पास उसकी उसकी पोती का नाम था रेवती और वो अपनी बेटी को लेकर पिता ब्रह्मा जी से पूछने गया था कि मैं मेरी बेटी का विवाह किससे करूं। लेकिन उस वक्त ब्रह्मा जी कहीं गंधर्वों के गाने में बैठे थे तो उधर का आधा घंटा उनके टाइम लग गया। जब ब्रह्मा जी आए तो पूछा, आप कैसे पधारे रेवत पुत्र? बोला, ये मेरी बेटी रेवती विवाह के योग्य है, ये राजा हमने गिन के रखे थे, आप बताइए किसके साथ विवाह करें। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोला, आधा घंटा गुजर गया, नीचे युग बीत गए, जिन राजाओं के आप नाम ले रहे वो तो रहे नहीं, उनके राज भी नहीं रहे, वो नाम ही नहीं, उनका खत्म हो गया, अब क्या करें? बोला, अब ऐसे करो, इस वक्त द्वारका में वसुदेव नंदन बलराम जी है और रेवती नित्य उनकी प्रियसी, आप जाके उनसे उनका विवाह का प्रबंध करें। तो रेवत पुत्र अपनी पुत्री रेवती को लेकर द्वारका आया और बलराम जी के साथ उसके विवाह करने का प्रबंध हुआ। तो हम कहें द्वारका छोटा टुकड़ा नहीं है, आप समझो जिसका नाम अभी सिर्फ द्वारका, इतनी द्वारका नहीं है, द्वारका बहुत 1600 मील में है। तो द्वारका से एक जगह है उसको कहते हैं जूनागढ़। उधर तीन पर्वत हैं, एक तो गढ़ गिरनार है, गिरनार उसको कहते हैं गिरनार पर्वत, उसके ऊपर दत्तात्रेय का बहुत बड़ा मंदिर है और हजारों स्टेप हैं, लोग जाते हैं चढ़ के उसके ऊपर, 9,990 स्टेप्स लोग चढ़ के ऊपर जाते हैं। और एक तरफ पर्वत है जिसके ऊपर बहुत सुंदर कृष्ण बलराम का मंदिर है, वहां बलराम जी का विवाह हुआ था, वहां रेवती को लाया गया था। तो बलराम जी के विवाह का स्थान वो पर्वत है, इसका पर्वत का नाम भी को याद आएगा। तीन पर्वतों के बीच में बहुत सुंदर सा नीचे तालाब है, तो ये भी बहुत दर्शन का सुंदर स्थान है, कभी द्वारका की यात्रा के अंतर्गत आता है, रेवत पर्वत, लेकिन रेवत पर्वत उसका नाम है कि रेवती का विवाह बलराम जी के साथ वहां हुआ। लेकिन रेवती थी सत्ययुग के जमाने की और तब रेवती का जो हाइट था वो 15-20 फुट होगा और बलराम जी तो द्वारपुर के लंबे थे, 8 फुट के तो थे, लेकिन रेवती तो बहुत लंबी थी और भी। अब क्या करना चाहिए? बलराम जी ने अपने हल को लेकर रेवती मैया की चोटी में यहां डाला और थोड़ा करके खींचा, बराबर से 1 इंच नीचे हुआ, वहां फिक्स कर दिया, फिर बराबर हो गए। ऐसे लिखा है, मैं क्या करूं? और हमने आपको कहा था कि भगवान रणछोड़ इसलिए भी बने, रणछोड़ के आए कि भगवान को मालूम था कि रुक्मणी का पत्र आने वाला है, देर नहीं होनी चाहिए उसमें। तो इसके बाद द्वारका वासियों की इच्छा थी कृष्ण का अब विवाह होना चाहिए। अब कृष्ण 25-28-30 साल के हो गए हैं, सुधर्म सभा में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, एक ब्राह्मण प्रवेश करता है, ब्राह्मण को देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ के उसका स्वागत किया, जिस आसन पे भगवान बैठते हैं उसके ऊपर ब्राह्मण को बिठाया, कुशल मंगल पूछा, फिर वहां से ले जाकर अपने महल में ब्राह्मण की पूजा की, जैसे ब्राह्मण सुधामा आया था ऐसे भगवान ने उसकी पूजा की। क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण की पूजा करना, उसका चरण धोना आदि सेवा करना, फल फूल आदि अर्पण किया। फिर पूछा कि जहां से आप पधारे हैं, विद्रभ देश से आए थे, कौन सा देश से आए थे? विद्रभ देश, ये जो अमरावती है मध्य महाराष्ट्र में, बॉम्बे से आगे जाएंगे एक जगह नाम है अमरावती, एक ट्रेन चलती है उसका नाम भी है विद्रभ एक्सप्रेस, अभी भी उसका नाम विद्रभ एक्सप्रेस है। तो यहां के महाराज भीष्मक महाराज वहां राज करते थे विदर्भ देश में, तो ब्राह्मण से पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण, ब्राह्मणों का वहां अच्छी तरह से देखभाल होती है, उनका सम्मान होता है ना? आपके राज्य में महाराज ब्राह्मणों को ठीक तरह से देखते हैं ना? क्योंकि जिस राज्य में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है वो राज आगे चलेगा नहीं। प्रभुपाद ने लिखा है श्रीमद् भागवत में, छोटे बच्चों का, स्त्रियों का, ब्राह्मण का, बूढ़े बुजुर्गों का और गाय का जहां सम्मान नहीं है वो सभ्यता सर्व का नाश हो जाएगा, वो सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, वो सभ्यता नाश हो जाएगी। ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण का इसलिए मान सम्मान करके सुरक्षा करनी चाहिए क्योंकि वो सबको रास्ता दिखाता है भगवान की तरफ जाने का, धर्म का, शिक्षा दीक्षा का कार्य करता है। वो नहीं रहेगा तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। स्त्री की रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि पवित्रता की रक्षा होगी, अच्छे बालक पैदा होंगे ताकि आगे भविष्य में देश का उन्नति होगी। और बालक की इसलिए सुरक्षा करनी चाहिए कि उसको शिक्षा ठीक मिलनी चाहिए, वो भविष्य का पुरुष है। चाइल्ड इज ए क्या कहते हैं, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ द फ्यूचर, आगे चल के वो पिता बनेगा। और गाय की इसलिए रक्षा करनी चाहिए कि गाय माँ है जो हमको दूध प्राप्त देती है, उस दूध से हमारा बहुत जो हमारा दिमाग है हमारा वो भगवान की भक्ति में लगने के लिए योग्य बनता है। और बूढ़ों की इसलिए ठीक तरह से देखभाल करनी चाहिए ताकि वो वापस भगवत धाम जाएं, दुनिया में दुखी ना हो। ये पांच की रक्षा होनी चाहिए। तो भगवान पूछते हैं कि ब्राह्मणों की रक्षा हो रही है, फिर पूछते हैं क्षत्रिय महाराज के राज में सब कुशल मंगल है? ब्राह्मण कहते हैं नहीं, वहां ब्राह्मणों की रक्षा होती है और सब लोग सुखी हैं, गौ ब्राह्मण सब आनंद में हैं। तब भगवान श्री कृष्ण क्या पूछते हैं, आपके आने का उद्देश्य बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, को ब्राह्मण कहता है, मैं संदेश लाया हूं, मेरे आने का उद्देश्य है कि मैं संदेश लाया हूं। महाराज भीष्मक जो विदर्भ देश के राजा है, उसके पांच पुत्र हैं और एक बहुत सुंदर कन्या है। पांच पुत्रों में जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है रुक्मी, वो श्री कृष्ण आपसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, इज एनवियस ऑफ यू। महाराज भीष्मक और चार भाइयों की इच्छा थी और रुक्मणी की इच्छा थी कि उसका विवाह आपके साथ हो, लेकिन उसका बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ उसका विवाह करना चाहता है और वो विवाह तय भी हो गया, उसकी तारीख भी तय हो गई है, डेट फिक्स हो गई, दिन बाकी तीन बचे हैं। रुक्मणी ने ये चिट्ठी आपके लिए दी है और संदेश भी लिखा है। और रुक्मणी कहती है, मैंने नारद आदि ऋषियों से आपकी कथा सुनी है, आपकी सुंदरता, आपकी वीरता और आपके वैभव की कथा सुनी है और मैं अपने मन से आपको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। तो रुक्मणी ने देखा नहीं था, कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन केवल कथा सुनी थी। यही हम बात कर रहे थे, कथा सुनने से भगवान में मन लगता है और फिर आदमी भगवान को अपनाना चाहता है। रुक्मणी का वर्णन है, ब्राह्मण कहता है बहुत सुंदर है, सुशील है, रुचिर आनंद है, उसका चेहरा बहुत आनंद, बहुत रुचिर आनंद, आनंद कहते हैं चेहरे को, रुचिर कहता है जिसको आदमी देखा है, देखे तो देखता रहे। और फिर रुक्मणी लिखती है कि मैं राजपुत्री हूं, मेरे भाई ने मेरा विवाह दमघोष के पुत्र के साथ करने का निर्णय कर लिया है, विवाह में केवल तीन दिन बचे हैं, आप मेरी चिट्ठी को देख के ऐसा मत समझना कि मैं जो है वो लज्जा छोड़ के ये बात कर रही हूं, लेकिन अगर आप नहीं पहुंचे तो मैं शरीर त्याग दूंगी और मैं आपको ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं और मैं ये इस जीवन में क्या कई जन्मों तक भी तपस्या करके आपको ही प्राप्त करूंगी और किसी को मेरे शरीर के ऊपर अधिकार नहीं। ये संदेश मैं लाया हूं, ब्राह्मण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण मैं भी रुक्मणी की सुंदरता का समाचार सुना है और मुझे मेरी भी निश्चित रूप से मन की कामना है कि मैं उसको प्राप्त करूं, और एक भक्त है जिसने मेरे को चिट्ठी लिख के मुझे प्राप्त करने के लिए भेजा है, तो निश्चित रूप से मैं चलूंगा। टाइम नहीं है, अभी चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ मंगाया, दारुक रथ लेके आओ। चार घोड़े भगवान के रथ में जुटते हैं, घोड़ों के नाम पद्म पुराण में लिखे हुए हैं। प्रभुपाद ने कृष्ण बुक में घोड़ों के नाम लिखे हैं, सुग्रीवादी उनके नाम है, उनके रंग है। अब घोड़े जब युद्ध के तैयार हो गए, दारुक को बोला, रात रात में 12 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय हुई। द्वारका से अमरावती 1000 किलोमीटर से दूर है, लेकिन वो बहुत तीव्र गति से भगवान का रथ चल के द्वारका की तरफ रवाना हुआ। दो शादी की तैयारी तो पहले से हो गई थी, वहां शिशुपाल अपनी बारात लेकर आया। उसके बाराती कौन थे? जरासंध महाराज, दंडवकर उसका भाई, शल्य, शालव, ये जितने असुर थे उसके साथी सब उधर आए। बड़ा कैंप लगा, महाराज भीष्मक में उन सब के लिए व्यवस्था की थी। और इधर घर में रुक्मणी के विवाह की तैयारी, मंगल कार्य हो रहे थे कन्या के। रुक्मणी बहुत चिंता में, अभी तक ब्राह्मण वापस नहीं आया, श्री कृष्ण का संदेश भी वापस नहीं आया। ऐसे तो नहीं है कि देवता नाराज हो गए हैं, ऐसे तो नहीं है कि मेरी चिट्ठी को देखकर भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे बहुत चिंता कर रही है, बहुत सी चिंता के ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इतनी देर में रुक्मणी जी के वाम भाग, लेफ्ट साइड की आंख और हाथ, वो उसमें थोड़ा कंपन हुआ। तो अच्छे स्वकन हो रहे हैं, अच्छे ओम, ये अच्छे जो है वो ओम, क्या कहते हैं, ओमेन, ओमेन क्या, अच्छे सुगन हो रहे हैं, इज ए साइन ऑफ सम गुड न्यूज। इतनी देर में ब्राह्मण अंदर प्रवेश किया, ब्राह्मण को प्रणाम किया रुक्मणी ने। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता समाचार सुना, समाचार कृष्ण आ गए हैं और आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। इच्छा तो बहुत थी, लक्ष्मी थी, कुछ भी दे सकती थी ब्राह्मण को, इतना बड़ा कार्य करके आया था। लेकिन कैसे भी रुक्मणी ने केवल हाथ जोड़ के कहा, नमस्कार ब्राह्मण देवता। इसलिए कभी कभी ब्राह्मण कहते हैं, लक्ष्मी उस दिन कुछ अगर दे देती ब्राह्मण को तो ब्राह्मण बेचारे गरीब न होते, लेकिन मां ने केवल नमस्कार ही किया। लेकिन लक्ष्मी की नमस्कार से ब्राह्मण संतुष्ट हो गया। रुक्मणी ने कृष्ण को लिखा था चिट्ठी में कि आप कैसे मुझे ले जाएंगे, आप ये अगर जानना चाहते हैं तो हमारे यहां नेम है, पूजा होती है देवी की, जो स्थान है जहां पूजा होती है उसका नाम है कोंडनीपुर, वहां सुबह सवेले मैं जाऊंगी, आप मुझे वहां से अपहरण कर सकते हैं। तो पहला विवाह रुक्मणी और श्री कृष्ण का हुआ, उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह, जो चिट्ठी के द्वारा हुआ, जिसको आज की भाषा में लव मैरिज कहते हैं, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। अब गंधर्व विवाह हो गया। दूसरे दिन सुबह इतनी देर में कृष्ण वहां पहुंच गया। अब जो कृष्ण वहां पहुंचा तो बलराम जी द्वारका में कहते, कृष्ण कहां चले गए? किसी ने कहा, वो ब्राह्मण के साथ रथ में यहां से चले गए हैं विद्रभ देश चले गए हैं, वहां महाराज भीष्मक के वहां। अरे वहां तो शिशुपाल आएगा, जरासंध आएगा, ये तो हमारे पुराने शत्रु हैं, अकेले कैसे कृष्ण चला गया? बलराम जी कहता, सेना तैयार करो, यदुवंश की एक अक्षुणी सेना ली, रथ लेकर रात रात में वहां से बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा और सुरक्षा के लिए आके सुबह वो भी पहुंच गए आके विद्रभ में। अब महाराज भीष्मक दोनों का स्वागत किया, यदुवंशियों का स्वागत किया उनको बहुत अच्छा स्थान रहने का दिया। शिशुपाल वाले कह रहे हैं कि इसको इनवाइट किसने किया है, ये कृष्ण बलराम कैसे आए, इनको किसने बुलाया। और भीष्मक महाराज कहते हैं ये शिशुपाल वाले ने तो नहीं बुलाया, उसका मासी का लड़का भाई है, उनकी तरफ से तो नहीं आया है। अब किसी को पता नहीं है कि वो बारात में आए लड़की की तरफ है कि लड़के की तरफ है, सभी कंफ्यूजन में। आजकल की शादियों में ऐसे होता है, कोई भी लड़का अच्छा कपड़ा पहना किसी शादी में खड़े होकर खाना शुरू करता है, पता नहीं किसकी तरफ से आया है। पता लगता है कौन किसकी तरफ से, नहीं पता लगता है ना। पुराने जमाने में बारात आती थी तो उसके स्वागत के लिए बारात के पहले लोग जाते थे बाहर और स्वागत करते थे, सबको तिलक लगाते थे, जो जो बाराती आते थे उसको स्टैम्प लग जाती थी कि ये बाराती है, बगैर स्टैम्प वाला अंदर नहीं आता, उनका स्वागत हुआ करता था। खड़े खड़े नहीं खाते थे, आजकल जैसे खाते हैं ऐसे है? बफेलो की तरह ऐसे नहीं खाते थे, बिठा के प्रेम से। आजकल की शादियों में दो आदमी को भोजन नहीं मिलता है, एक दूल्हा को एक उसके बाप को, दोनों पूजा में लगते हैं, बाकी सब खा के चले जाते हैं, जो बच्चा खचा होता है गर्म करके उन बेचारों को खिलाते हैं। पहले जमाने में हमें तो हमने आंखों से देखा है, और शादी के समय पहले जिसकी शादी होती थी उसको बहुत सुंदर आसन के ऊपर बिठा के उसके अगल जैसे ये टेबल है ऐसे एक स्पेशल टेबल बनता था लकड़ी का, सिर्फ उस काम के लिए, उसी दिन के लिए, उसके लिए, उसके ऊपर बड़ा थाल है, उसके अंदर सब भोजन पहले दूल्हा के थाली में पड़ता था, और वो जिसको भोग लगाना होता था अपने देवता पितर को जो भी है उनको करके, वो जब पहले वो खाता था तब दूसरों को खाने की इजाजत होती थी। अब सब खा जाएंगे तब बेचारे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उस शादी में ऐसे मेहमान तो सब बहुत आ गए, सबका स्वागत हो गया। अब दूसरे दिन सुबह रुक्मणी को ब्राह्मण स्त्रियां, कुछ बूढ़ी समझदार स्त्रियां, उनकी मां के साथ लेकर कौंडनीपुर के मंदिर में देवी की पूजा के लिए जाने लगी। ये कौंडनीपुर का मंदिर अमरावती से 50-60 किलोमीटर है, आज भी देवी का मंदिर वहां है नदी के किनारे पे। अब इस्कान का वहां मंदिर लोकनाथ स्वामी महाराज बना रहे थे, वहां एक मंदिर इस्कान का बन रहा है, अमरावती में है लेकिन कौंडनीपुर में भी बन रहा है, क्योंकि वो रुक्मणी का जन्म स्थान है और रुक्मणी का राज्य था वहां पिता का। और प्रभुपाद जी इसके ऊपर लिखा है कि लोग कहते हैं कि पहले मूर्ति में भगवान की पूजा नहीं होती थी, देवी की पूजा उस जमाने में भी हो रही थी, तो लोग कैसे कहते हैं 5000 साल पहले राजकुल की देवी थी उसकी पूजा करने जाते थे, तो ये तो तब भी पूजा होती थी, तो कैसे लोग कहते हैं पहले पूजा नहीं होती थी ठाकुरों की। वैष्णव लोग भगवान विष्णु की, रामना कृष्ण नारायण की पूजा करते थे, लेकिन जो शक्त लोग हैं तब राजा महाराजाओं के घर में देवी का कुल देवी का मंदिर होता था, उसकी पूजा होती थी। अब जब रुक्मणी देवी के मंदिर में पूजा के लिए गई तो बूढ़ी माताएं ब्राह्मणों ने सबने कहा अब ऐसे करो, गणेश जी की पूजा करो, मां दुर्गा की पूजा करो। रुक्मणी कहे दुर्गा को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, लेकिन दोनों को कृपा करके विनती करती हूँ कि कृष्ण मेरे को पति के रूप में मिले। ये तो आस्ते आस्ते बोलती है, कोई सुनता नहीं है, लेकिन बोलती है हे गणेश जी इस बात में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, माँ मेरे को पति के रूप में कृष्ण प्राप्त हो। पूजा पूरी हुई, प्रसाद लिया रुक्मणी ने, वहां से बाहर निकली तो पैदल चल के आ रही है कुछ सहेलियों के संग में, कुछ बूढ़ी माताओं के संग में। लोग बाहर रुक्मणी को देखने के लिए खड़े थे, सैनिक जो आए हुए राजा महाराजा, और कोई हाथी पे कोई घोड़े पे रथ के अंदर सब देख रहे थे। और कितनी सुंदर थी रुक्मणी, वो आंख ऊपर उठा के थोड़ी सी मुस्कुराए और उसके कुंद जैसे सफेद दांत बाहर निकलते तो घोड़े के ऊपर बैठे बैठे सैनिक ऐसे मूर्छित होकर नीचे गिर गए, हाथी के ऊपर बैठे हुए लोग नीचे गिर गए। ऐसा भागवत में लिखा है कि उसकी सुंदरता को देखकर सब लोग के शिशुपाल का भाग है इतना ही तो सबका है, उसको देख के आश्चर्य। लेकिन रुक्मणी तो केवल ढूंढ रही है कृष्ण कहाँ है, उसने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन कृष्ण का इतना समाचार सुनके उसके हृदय में कृष्ण की जो मूर्त बनी हुई थी, देखा सामने, हाँ वो सांवला सा खड़ा है सामने, मन में आया कि भाग के जाऊं उसके रथ के ऊपर चढ़ूं, लेकिन मर्यादा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसने मेरे को बुलाया है अब तो उसको मैं ही जाके उठाऊंगा हाथ देकर, अब उसको मेरे पास आने की तकलीफ करनी पड़ेगी, फिर जो मुझे बुलाए और फिर भी उसको आने का परेशानी क्यों करनी पड़ेगी, मैं तो भावसागर के पार कर देता हूं, यहां तो कोई मुश्किल नहीं है। भगवान ने रथ आगे बढ़ाया, हाथ देके रुक्मणी को ऊपर रथ के ऊपर चढ़ाया और भेड़ियों के बीच से शेर जैसे अपना शिकार उठाता है ऐसे लेके भगवान ने रथ आगे बढ़ा। अब तो सब लोग जो गिरे थे उन्हें, अरे 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 शिशुपाल की, अरे शिशुपाल की वधु को उधर को देखो ले जा रहा है वो, वसुदेव कृष्ण ले जा रहे थे, उठो 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 उठाओ हथियार और तीर उठाओ तमा। तो अब तो जरासंध आदि सब लड़ने के लिए तैयार हो गए। रुक्मणी कहती अब क्या होगा, कृष्ण की ओर देखे। कृष्ण बोला आप चिंता मत करो, दाऊ जी है पीछे, यदुवंशियों की सेना है इनकी, इनका आप देखो अब क्या करते हैं, आप घर ससुराल पहुंचने से पहले पहले देखो क्या हो रहा है। इतनी देर में दाऊ जी खड़े होकर सबको जो यदुवंशियों की सेना ऐसे मारने लगी, सबने देखा शादी शिशुपाल की, हम अपने आदमी क्यों मराए यहां। थोड़ी देर के लिए सबको जोश आया कि भाई कुछ करना चाहिए, तो बोले सेना हमारी मर रही है, हमारा ना कुछ लेना देना, हम तो केवल बारात का भोजन खाने आए थे। तो सब जरासंध लौट के शिशुपाल को कहता, शिशुपाल तुम्हारी, हमें बहुत दुख है कि तुम्हारी पत्नी को कृष्ण उठा के ले गए, 17 बार मेरे को भी उसने हराया था, लेकिन हमारा वक्त आएगा आप उसकी चिंता मत करो। वो रो रहा है, बोला चिंता क्या कर, पत्नी को ले गया आप चिंता न करो, क्या चिंता करनी, लेकिन कौन आदमी बारात में रहेगा। दूसरे दिन सब लोग वहां से चले, अब तो कोई रहा है नहीं। तो इतनी देर में रुक्मी जो भाई था बड़ा रुक्मणी का, वो अपनी सेना लेके बाहर निकला, कहा शिशुपाल तुम चिंता मत करना, तुम यहां रुकना, मैं जाता हूं, कृष्ण को मार के रुक्मणी को वापस नहीं लाया तो मैं वापस कौंडिन्यपुर नहीं आऊंगा। अब अपनी सेना लेके यहां से ये चला आगे, और यदुवंशी की सेना और उनके बाकी युद्ध हो रहा है। आगे रुक्मी ने देखा कृष्ण के रथ के ऊपर रुक्मणी को ले जा करते हुए, तीर चलाता है रुक्मी और मुंह से बोलता है ग्वाला कहां लेके जा रहा है हमारी बहन को, रुक जाओ मेरे से लड़ाई करो। भगवान श्री कृष्ण बोले कुछ नहीं, लेकिन तीरों का जवाब तीरों से देने लगे। और फिर एक समय भगवान ने एक बार 6 तीर मारे, उसके घोड़े मार दिए, उसका सारथी मार दिया, उसके जैसे वो कमान उठाए वो कमान की डोरी काट दे, 3-4 डोरियां कट गई। अब तो रुक्मी का गदा फेंकी, भगवान ने गदा को तोड़ दिया श्री कृष्ण ने, अब हाथ में तलवार लेके भागा, तलवार काट दी भगवान ने, और फिर पकड़ के रुक्मी को तलवार अपनी निकाली। अब रुक्मणी चरणों पे गिर के कहती श्री कृष्ण को मेरे भाई की रक्षा करो, इसको मारो मत। और श्री कृष्ण कहते नहीं नहीं आपका भाई है, कोई बात नहीं, नहीं मारते हैं इसको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी ऐसे साफ कर देते हैं। तो भगवान ने ऐसे थोड़ा सा दाढ़ी थोड़ी छोड़ी होगी, थोड़ा मूछ आदि छोड़ दी, 2-4 बाल ऐसे काटे, और कपड़ा पड़ा था वहां रुक्मणी के साथ, कोई कपड़ा था कोई ऐसे, तो कपड़े से बांध के रथ में रुक्मणी को बिठा दिया। रुक्मणी भी डर रही है, भाई का हाल देख रही है। इतनी देर में बलराम जी वहां से सबको हरा के यदुवंशी की सेना लेके आए, और देखा आप कहते हैं क्या करना चाहिए इस वक्त, तो ये हमारी पुत्र, ये हमारी जो बहू है ये घर में पहुंची नहीं है, उससे पहले इसके भाई का ये हाल हुआ है, इसको भी खुश करना चाहिए। और कृष्ण मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ा हूं थोड़ा जानता हूं। कृष्ण कहता है अपने साले के साथ कभी कोई ऐसे करता है, ये हमारे कुल में किसी को इस तरीके से रिश्तेदार को संबंधी को ऐसा हाल नहीं किया, आपने इसका ये हाल क्यों बना दिया। और फिर रुक्मणी की ओर देख के कहते हैं बहू आप चिंता मत करो, ये काल ऐसा होता है कभी किसी को कुछ कोई हारता है, क्षत्रिय धर्म इतना कठोर है कि क्षत्रिय धर्म में भाई भाई को मार देता है, अब इस वक्त ऐसी स्थिति हो गई है आप इसकी चिंता मत करना, ये तो शरीरों का संबंध है। उधर वो ज्ञान दे रहे हैं, फिर कृष्ण को बोलते हैं आपको कभी ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप कभी साले को ऐसे करते हैं क्या, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो। बलराम जी के कहने के ऊपर रुक्मी वहां से गया, वापस तो रुक्मी गया नहीं क्योंकि वचन करके आया था, कौंडिन्यपुर गया नहीं, और भोजकर नाम का एक अपना नया नगर बनाया, वहां रहने लगा। और श्री कृष्ण बलराम जी और सारे यदुवंशी वापस द्वारका की तरफ लौटे। द्वारका में ये समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को साथ ले आ रहे हैं, भीष्मक पुत्री को, बहुत बड़ा स्वागत द्वारका वासियों ने किया। वो स्थान एक है, उसको कहते हैं माधवपुर। माधवपुर जो आज द्वारका है, वहां से जब सोमनाथ की तरफ जाएंगे, सोमनाथ जहां भगवान शंकर का मंदिर है और जहां सोमनाथ, जहां से भगवान प्रभास क्षेत्र, जहां से भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, सोमनाथ में वो स्थान है जहां से भगवान अपने धाम चले गए थे, उन दोनों के बीच में एक स्थान आता है, उसको कहते हैं माधवपुर। समुद्र के किनारे पे, जैसे आपका समुद्र है ना, यहाँ समुद्र के बिल्कुल किनारे पे माधवपुर गांव है, वहां रुक्मणी और कृष्ण का विवाह हुआ। जो स्थान है कहते हैं यहां उनका विवाह संपन्न हुआ। और ये पहला विवाह कौन सा आपको बताया, रुक्मणी और कृष्ण का, गंधर्व चिट्ठी के द्वारा हुआ, प्रेम का। दूसरा विवाह राक्षस अपहरण करके लाए, क्षत्रियों में ये परंपराएं हुआ करती थी, उसको राक्षस विवाह करते हैं, अपहरण करके लाना, किडनैपिंग। अब आप लोग तो गंधर्व विवाह में जा नहीं सकते, उधर जाओगे कैसे, वो तो चिट्ठी में विवाह हुआ, और उठा के आए। राक्षस विवाह में भी आपको इन्विटेशन नहीं मिला होगा। अब तीसरा विवाह हो रहा है, इसको बोलते हैं विधिवत विवाह, वैदिक नमूने। अब तो सबको चिट्ठियां भेजी के कृष्ण का विवाह होने जा रहा है, तो कौरव पांडव आए, कुंती आई, पांच भाई वो आए, पद्म पुराण लिखती है नंद बाबा को चिट्ठी गई, नंद बाबा यशोदा आए, कृष्ण हमारा का विवाह हो रहा है, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। तब रुक्मणी का पिता भीष्म को अपने चार भाइयों के साथ कन्यादान करने के लिए भी वहां आया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह साक्षात लक्ष्मी रुक्मणी के साथ माधवपुर में हुआ, और द्वारका के तरफ फिर वो वहां से गए। अब जाएंगे कभी द्वारका में, कोई गया है द्वारका, माता जी द्वारका गई। द्वारका में एक तो द्वारकाधीश का मंदिर है अभी जो बनाया है, एक बेट द्वारका है जो समुद्र के अंदर है, और वहां से जब आते हैं रास्ते में 6 से 3 किलोमीटर बाहर रुक्मणी का मंदिर है। रुक्मणी का मंदिर अलग है, कृष्ण का मंदिर अलग है, दुर्वासा ऋषि ने शराब दिया था, तो रुक्मणी का मंदिर ही अलग है वहां। तो वो रास्ते से जाते हुए फिर ये कथा हुई थी, वो पंडित जी वहां बोलता बताता है कभी, वो कथा अलग है बाद में। तो यहां ये पहला विवाह भगवान श्री कृष्ण का हुआ। इसके बाद भगवान के दूसरे विवाह की चर्चा ऐसे होती है कि एक दिन श्री कृष्ण बैठे थे सभा में, तो किसी ने कहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण, बाहर देखो तो सूर्य उगा है। बोला सूर्य तो सुबह उगा है, अभी कौन सा सूर्य उगा है। बोला देखो कितना प्रकाश आ रहा है। बोला ये प्रकाश नहीं है, ये मणि है, समंतक सूर्य देव ने दी है, और वो जो आ रहा है ना सामने, क्या नाम है उसका, अपने सत्यभामा का पिता सत्राजीत, ये सत्राजीत है, सूर्य से इसको मणि मिली है एक, वो गले में डालता है तो उससे प्रकाश निकलता है, ये सूर्य नहीं है, ये सत्राजीत है। ये क्या है? बोला ये मणि सूर्य देव की प्रार्थना करने से उसको मिली है, और इस मणि, ये मणि रोज का सोना देती है, 40 किलो से ऊपर सोना रोज देती है। श्री कृष्ण ने सत्राजीत को कहा देखो इतना सारा धन एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, ये राजकोष में दे दो महाराज उग्रसेन को मणि, ये धन जो है ये ट्रेजरी में होना चाहिए। सत्राजीत बोलता नहीं, सूर्य देव ने मेरे को दिया, मैं आपको नहीं दूंगा। कृष्ण को बात भूल गई। सत्राजीत का भाई प्रसेन उसका नाम है, घोड़े के ऊपर एक दिन मणि लेके गले में चला गया जंगल। जंगल में सत्राजीत चला गया, वापस आया ही नहीं। अब तो ये बात फैल गई, कृष्ण ने मणि चुरा ली, सत्राजीत ने दी नहीं, और कृष्ण ने मणि को कैसे भी उठा लिया वहां से। कृष्ण के ऊपर आरोप लग गया। एक ये चौथ का चंद्रमा होता है, फोर्थ डे का चंद्रमा कोई देखता है उसके ऊपर आरोप लगता है। अभी तक लोग ये कथा बताएं कृष्ण के ऊपर आरोप लगा था, कोई एक चंद्र होता है उसको देखते नहीं है उस दिन लोग, पर इस चंद्र को देखने से आरोप लग जाता है, कोई हमारे ऊपर उंगली उठाएगा। अब कृष्ण ने कहा तो मेरी बदनामी हो रही है, मैं तो मणि के बारे में जानता भी नहीं हूं, तो अब मुझे ये मणि को कहीं से ढूंढ के निकालना चाहिए। अब श्री कृष्ण कुछ और यदुवंशियों लेकर जंगल में गए, घोड़े के पांव देखे, आगे जाके देखे घोड़ा मरा हुआ है, प्रसीन गिरा हुआ है, अरे प्रसीन मर गया घोड़ा, लेकिन घोड़े के पास में दुर्गा के वाहन शेर के निशान पड़े, शेर ने मारा है। शेर के निशान आगे जाके देखते हैं तो शेर मरा पड़ा है और वहां रीछ के निशान पड़े हैं। तो रीछ के निशान उठा देखते देखते भगवान श्री कृष्ण एक स्थान के ऊपर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ी केव थी, गुफा। सब यदुवंशियों का आप यहां रुको, मैं गुफा में जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण गुफा में प्रवेश किया तो अंदर एक बालक बैठा था, उसके हाथ में मणि पड़ी थी, उसके हाथ में वो समंतक मणि पड़ी थी, बड़ा प्रकाश निकल रहा था। और बालक ने ये आदमी को अंदर देखा, भयभीत होकर मणि को छोड़ के अंदर चला गया, गुफा में और अंदर गया। कृष्ण ने मणि को उठाया, इतनी देर में अंदर में जामवंत। उसने बच्चे को देखा डरा हुआ, मणि कृष्ण के हाथ में देखी और जामवंत ने युद्ध शुरू कर दिया। घोर युद्ध 27 दिन बाहर खड़े खड़े यदुवंशी थक गए, अभी तक कृष्ण नहीं आया, वापस द्वारका आ गए और देवी की पूजा शुरू करना कर दी कि भगवान श्री कृष्ण सुरक्षित वापस आए। यहां 27 दिन युद्ध चला। जामवंत कहता है मैं तो राम के साथ, श्री रामचंद्र के साथ चला गया, रावण के साथ भी युद्ध किया, इतना मैं कभी थका नहीं, ये तो फतीग कैसे हो गया, मैं इतना सारा फतीग कैसे मेरे को हो गया। तब ये थोड़ा ध्यान करते, ये तो और ये दिखते, ये तो रामचंद्र जिसकी मैं पूजा करता हूं, ये तो साक्षात श्री कृष्ण के अंदर तो सभी अवतार समाये हुए हैं। प्रणाम करता है और कहता है मैं आपको पहचान नहीं पाया। तब तो बोला है ये मेरी बेटी जामवती, ये आपको मैं विवाह के हाथ में देता हूं और जामवती के साथ ये मणि भी आप ले जाइए। तो भगवान उस जामवत गुफा में जामवती को प्राप्त किया और वहां से मणि लेकर वापस आए। ये कभी द्वारका जाएंगे तो उसी रास्ते से जब जाते हैं तो बीच में सुदामा का घर आता है, पोरबंदर, जहां सुदामा ब्राह्मण रहता था। सुदामा के घर से 15-20 किलोमीटर एक हाईवे पे जाएंगे तो वहां मुड़ के नीचे जाएंगे तो वहां जामवंत की गुफा है। इस बार हम गए थे द्वारका जब यात्रा में, अभी तो नीचे उतर के मेरे लिए बहुत मुश्किल था लेकिन मैं उतर के गया, उतर के सीढ़ियां अंदर, और अंदर ये आपका घर है, इसके जितने मेरे ख्याल में 10-12 घर हुए थे, इतना बड़ा नीचे गुफा है ऐसे बनी हुई, नीचे जमीन में गुफा है पूरी और ऊपर से कहीं कहीं से पानी गिरता है और वहां आश्रम किसी ने बना के रखा है। और उस गुफा से दो रास्ते जाते हैं, कहते हैं पुराने जमाने में एक द्वारका जाता था रास्ता और एक रास्ता वहां से जाता था जहां गिरनार है, तो वो गुफाएं अंदर पड़ी है, जाके देख अभी भी देखा जाता है, थोड़ा अंदर बल्ब बल्ब लगा दिया नहीं तो अंधेरा होता है। तो जामवंत की गुफा में से और अभी भी वहां की जो रेती है ना, जो वहां की सैंड है वो ऐसे लगती है जैसे गोल्डन है, दिखने में गोल्डन जैसी लगते है। तो वहां से वो सैंड भी लाए थे भक्त लोग, हम तो गए तब थोड़ा बरसात हो रहा था ना, कि वैसे वो स्थान भी कभी जाके जामवंत गुफा को देखना चाहिए, बड़ा अच्छा वहां का पुजारी है, बेचारे ने प्रसाद वसाद खिलाया, हम जितने गए थे 5-7 आदमी। तो भगवान का ये दूसरा विवाह, वापस जामवती को लाए और जामवती के साथ विवाह भगवान का हुआ। और मणि जब वापस भगवान लाए तो जामवती को कहा ये मणि हम वापस सत्राजित को देते हैं, सत्राजित ये तुम्हारी मणि देखो, तुम्हारे भाई प्रसीन को शेर ने मारा, शेर को रीछ ने मारा, जामवत ने ये उसकी पुत्री और ये मणि आप ले लो। अब तो सत्राजित कहता है मैं, मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई, इसका मैं कैसे उतारूंगा कलंक, मेरी बेटी सत्यभामा का विवाह आपके साथ कर दे। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। सत्यभामा बहुत भगवान को प्रिय थी और सूर्य देवता ने वैसे दी थी, ऐसे तो बहुत इसके और भी रहस्य की कथाएं हैं इसके पीछे के, राधा रानी पीछे यहां से चली गई जमुना में, जमुना से, जमुना सूर्य की बेटी है, सूर्य के पास चली गई और सूर्य ने उसको सत्यभामा के रूप में दिया और वापस पर कृष्ण के साथ उसका विवाह हुआ। तो राधा रानी सत्यभामा के रूप में यहां आके द्वारका में भगवान के संग में रही, ऐसा जो है जीव गोस्वामी आदि ने इसका भाव ऐसे लिखे हैं कि एक दिन तो उनका कहां रहे, जमुना में गए, जमुना में तो सूर्यदेव के पास गए, सूर्यदेव ने उसको वापस सत्राजित के पास भेज दिया और भगवान का ये तीसरा सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। लेकिन भगवान का मणि मैं नहीं रखूंगा, मणि सत्राजित तुम रखो। इतनी देर में भगवान को निमंत्रण आया हस्तिनापुर से, युधिष्ठिर महाराज ने हमारे पास यज्ञ हो रहा है, आप आइए। भगवान वहां गए एक दिन अर्जुन के साथ घूमते हुए यमुना के किनारे, तो देखा एक लड़की तपस्या कर रही है। अर्जुन का जरा देव क्या हो, कौन है, क्या कर रही है? अर्जुन क्या बोला, देवी तपस्या कर रही हो, क्या हो रहा है यह? बोला मैं तपस्या कर रही हूँ, कृष्ण के साथ मेरे को विवाह करना। अर्जुन वापस आया, बोला श्री कृष्ण वो कह रही है कि मुझे कृष्ण के साथ विवाह करना है। बोला बुलाओ, बार बार आज की जरूरत नहीं है, बिठाओ रथ में, कोई खर्चा नहीं करना। ये कालिंदी, कालिंद पर्वत की बेटी है यमुना, कालिंदी यमुना जाए। तो ये चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ, फिर भगवान हस्तिनापुर को लाए और फिर विवाह आसल में आकर द्वारका में किया। तो ये चार पटरानियां और चार और पहले पटरानियां, मित्रावृंदा अवंती का नगर उज्जैन की है मित्रावृंदा, और एक नागनजीति है, एक लक्ष्मणा है और एक सैबिया है। इनमें से तीन को तो भगवान उठा के लाए, केवल नागनजीति का विवाह हुआ। और नागनजीति के पिता ने कहा मेरी बेटी किसी साथ विवाह करने के लिए ये सात बैल हैं, इनको आप पहले बस में करके दिखाओ। जो राजकुमार आते थे कहते थे ये सेवन बुल्स हैं, इसको जो कंट्रोल करेगा उसको मेरी लड़की नागनजीति दूंगा। तो बुल ऐसे थे कि जो राजकुमार आता तो हाथ पांव तोड़ते, कोई आने को नहीं, सब डरते थे, लगे फोटो लगे थे कि ये इसका हाथ टूटा, इसका नाक टूटा, इसका कान टूटा। कोई किसी को हिम्मत नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो ऐसे ऐसे कंडीशन शर्त के ऊपर शादी हम नहीं करते। उसने कहा महाराज हमने तो ये हम तो हमारी इच्छा आपको देनी है हमारी कन्या, लेकिन ये नेम हमने बना रखा है, हमारा सम्मान कीजिए। भगवान का ठीक है, भगवान एकदम अपने आप को सात में विभाजित किया, बिकम सेवन, और सात बुल्स को बांध के खड़ा कर दिया। अब तो बहुत जहेज भगवान को मिला नागनजीति के साथ, बहुत हाथी घोड़े रथ मिले, और लक्ष्मण को मदर देश से भगा के आए, मित्रावृंदा का भाई देना नहीं चाहता था उसको भगा के लाए, और सैबिया, ये आठ रानी भगवान की, इसको बोलते हैं अठपट रानी। बाकी 16,100 वो था नरकासुर भोमासुर। अब भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं द्वारका में, इंद्र आया, इंद्र ने कहा हमारी समस्या है। समस्या क्या है? बोला हमारी माता आदिति के कुंडल भोमासुर लेके गया, वरुण का छाता लेके गया है जो उसके सिंहासन का था, और कुछ तो मंदराचल पर्वत का हिस्सा स्वर्ग का लेके उसके ऊपर कब्जा करके बैठा है, मणिपुर को लेके बैठा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर और वहां से गरुड़ के ऊपर चढ़े और गए प्रयाग ज्योतिष सर, जहां उसका राज था भोमासुर का। इतना सुरक्षित था उसका जो कंट्री थी, उसको बाहर से तो बहुत बड़ा वाल था, उसके अंदर एक रिवर थी और उसके अंदर इलेक्ट्रिक वायरिंग थी और उसके अंदर अग्नि का था, ऐसे चार पांच वायर जो उसकी बाउंड्रीज थी, और हर एक बाउंड्री पे बहुत लोग रक्षा के लिए खड़े थे। श्री कृष्ण ने पहले तो अपने बाणों से, फिर सुदर्शन चक्र से सबको काटा, तो आखिरी दीवार के पास मूरा सोया हुआ था, पांच सर का राक्षस, वो जैसे जागा, देखा ये कौन आ गया, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और भगवान ने मूरा के पांच चारों गर्दन पांचों काट दिए, तो भगवान का नाम हो गया मुरारी। तो ये मूरा राक्षस को मारा, और तब तो अंदर भोमासुर ने मूरा के बेटे और एक पूरी सेना को भेजा, और भगवान ने सारी सेना को अपने तीर बाणों से समाप्त किया। तब भोमासुर स्वयं लड़ने के लिए आया। ये भोमासुर पृथ्वी का बेटा है और वाराहदेव का, भगवान का बेटा है, और भगवान ही उसको मार रहे हैं क्योंकि असुर हो गया। अब भोमासुर को जब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मारा, तो पृथ्वी देवी ने भगवान को प्रणाम किया, कहा ये असुर हो गया था, ये कुंडल है मां आदित्य के, ये छाता है, आप ले लीजिए। और पृथ्वी ने कहा इसका बेटा है, ये आपसे डर रहा है, इसको आशीर्वाद दीजिए। भोमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को कैद करके रखा था, कोई बड़ा यज्ञ करना था तो उसके लिए। अब राजकुमारियां सब अंदर से बाहर निकली, कृष्ण को देख के कहा कि तो ऐसा पुरुष तो हमारे को जीवन में मिलेगा नहीं, और हम तो एक किसी असुर के कैद में रही है, इतने दिनों तक इसके पास होस्टेज रही है, इसने हमको यहाँ बंदी बनाकर रखा है, अब हमारे को समाज में कोई लेगा नहीं। कृष्ण ने कहा कोई नहीं लेगा तो हम ले गए 16,100। इन सबको भगवान ने रथ में चढ़ाया और इन रथों को लेकर द्वारका गए, द्वारका में सबके लिए महल बनाया। 16,100 ये हो गई और आठ पहले विवाह हो गए, ऐसे भगवान के 16,108 रानियों और आठ। लोग कहते हैं इतने सारे भगवान ने स्त्रियों से विवाह क्यों किया। तो पति किसको कहते हैं, स्त्री किसको कहते हैं, जिसके हृदय में पति बसे, ऐसे ना। अब हृदय में बसे न बसे, आजकल लोग हृदय जैसा लॉकेट बना के उसमें पति का फोटो तो लगाते हैं कम से कम, अंदर के अंदर हार्ट जैसा लॉकेट बनाते हैं उसमें पति का फोटो लगते हैं, हमारे दिल में पति है। अब हम सबके दिल में कौन है, परमात्मा है कि नहीं, तो इसका मतलब वो हमारा पति है ना, तो हमारा पति हुआ ना। तो ये प्रश्न नहीं है कि उसने इतनी पत्नियां क्यों की, प्रश्न ये कि आपने दूसरे की पत्नी को क्यों पकड़ के रखा, जिसकी दिल में कोई और बैठा है उसको आपने पत्नी कैसे बना दी। भगवान ने क्यों बनाया कि उसके तो अधिकार है, उसके तो सारे हैं, वो एक पुरुष है, बाकी सब है ही, शक्ति है भगवान के ही भोग के लिए है। तो आपने क्यों भोग शुरू किया है, भगवान को छोड़े, इस प्रश्न तो ये है, वो नहीं है कि भगवान ने क्यों विवाह इतने किए। तो भगवान का ये, और फिर श्री कृष्ण को हर एक रानी से 10 बेटे और एक बेटी हुई, और इन सब के बहुत बड़ा विस्तार है इनका। अब यहाँ इस कथा को विराम देते हैं, और कल तुलसी और सालंगराम का भी विवाह होगा। तो तुलसी भगवान की गोपी है वृंदा, और सालंगराम नारायण के रूप में है, तो उनका कल विवाह होगा। तो आज कृष्ण का विवाह हमने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हो गया 1 घंटा। हरे कृष्ण, माता जी ने भगवान के विवाह के लिए आप सबको भोजन का प्रबंध किया है। हाँ, भक्ति तो भगवान की।